नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन नाट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा, मार्ड्रेट ए बोरेन की पुस्तक AI, इट्स नेचर एंड फ्यूचर कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर एक वैचारिक और दार्शनिक विवेचन है। यह केवल मशीनों की तकनीकी क्षमता का परिचय नहीं देती, बल्कि पूछती है कि बुद्धिमत्ता वास्तव में क्या है और क्या कंप्यूटर कभी सचमुच समझ, रचनात्मकता, भावना या चेतना रख सकते हैं। संज्ञानात्मक विज्ञान की वरिष्ठ शोधकर्ता बोरेन AI के इतिहास, उसकी प्रमुख पद्धतियों, न्यूरल नेटवर्कों, रोबोटिक्स और कृत्रिम जीवन की चर्चा को मनुष्य तथा पशु मन की वैज्ञानिक समझ से जोड़ती है। पुस्तक का उद्देश्य AI से जुड़ी अतिरंजित आशाओं और भय दोनों को जांचना है। वह दिखाती है कि अनेक उपयोगी AI प्रणालियां पहले ही रोजमर्रा के जीवन में मौजूद हैं, फिर भी विशिष्ट कार्य में कुशल होना सामान्य मानवीय बुद्धि के बराबर नहीं है। संक्षिप्त लेकिन विचार सघन यह पुस्तक तकनीक, मन और भविष्य के संबंध पर संतुलित दृष्टि विकसित करती है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, सामान्य बुद्धिमत्ता को AI का कठिन लक्ष्य मानना। पुस्तक में बोरेन सामान्यता को AI की केंद्रीय चुनौती के रूप में रखती है। किसी सीमित कार्य में दक्ष प्रणाली जैसे वर्गीकरण, अनुवाद, खेल या खोज उपयोगी हो सकती है, पर वह हर नई परिस्थिति में लचीले ढंग से तर्क नहीं कर सकती। इसके विपरीत, मनुष्य अलग अलग प्रकार की समस्याओं के बीच ज्ञान का स्थानांतरण करते हैं, अधूरी जानकारी में निर्णय लेते हैं और संदर्भ के अनुसार अपने लक्ष्य बदलते हैं। इसी व्यापक अनुकूलनशीलता को सामान्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता की आकांक्षा प्रेरित करती है। बोरेन नियम आधारित प्रणालियों, अवधारणाओं के प्रतिनिधित्व, अर्थ संबंधी नेटवर्क और तर्क या संभावना पर आधारित अनुमान जैसी पुरानी तथा प्रभावशाली AI पद्धतियों की भूमिका पर ध्यान देती है। इन तरीकों से यह स्पष्ट होता है कि बुद्धिमत्ता केवल तेज गणना नहीं है, प्रणाली को यह भी निर्धारित करना पड़ता है कि कौन सी जानकारी प्रासंगिक है, किस नियम को कब लागू करना है और बदलती परिस्थिति में अपने निष्कर्ष की सीमा क्या है। इसलिए अधिक कंप्यूटिंग शक्ति अपने आप सामान्य बुद्धि की गारंटी नहीं देती। सामान्यता का प्रश्न AI को सीधे संज्ञानात्मक विज्ञान से जोड़ता है, क्योंकि मशीन बनाने की कोशिश हमें यह समझने पर मजबूर करती है कि मनुष्य का ज्ञान, स्मृति और विवेक कैसे संगठित होते हैं। दूसरा, भाषा। रचनात्मकता और भावना को संगठनात्मक चुनौती के रूप में देखना। बोरेन भाषा रचनात्मकता और भावना को ऐसी क्षमताओं के रूप में लेती है जिन्हें अक्सर केवल मानवीय माना जाता है। भाषा का प्रश्न केवल शब्दों को पहचानने या वाक्य बनाने का नहीं है, अर्थ संदर्भ, साझा ज्ञान, संकेत, उद्देश्य और परिस्थिति से बनता है। इसलिए किसी प्रणाली का सही वाक्य उत्पन्न करना इस बात का पर्याप्त प्रमाण नहीं कि वह उसके अर्थ को मानवीय ढंग से समझती है। रचनात्मकता के विषय में पुस्तक यह उपयोगी भेद सामने रखती है कि नवीन परिणाम नियमहीन चमत्कार से नहीं, बल्कि नियमों, सीमाओं और संभावनाओं के जटिल अन्वेषण से भी उत्पन्न हो सकते हैं। AI संगीत, चित्र, डिजाइन या विचारों के नए संयोजन बना सकती है, लेकिन इससे रचनात्मक अनुभव या आत्म जागरूक उद्देश्य स्वतः सिद्ध नहीं होता। भावना भी केवल निजी अनुभूति नहीं, बल्कि ध्यान, प्राथमिकता, निर्णय और सामाजिक व्यवहार से जुड़ी हो सकती है। इस कारण भावनात्मक व्यवहार का मॉडल बनाना संभव हो सकता है, पर उससे अनुभवित भावना का निष्कर्ष निकालना अलग दार्शनिक कदम है। बोरेन का विश्लेषण सरल दावों से बचाता है। ना तो भाषा और रचनात्मकता को रहस्यमय मानकर मशीनों से बाहर कर देना उचित है, ना उनके व्यवहारिक अनुकरण को चेतन समझ का निर्णायक प्रमाण मानना। तीसरा, कृत्रिम न्यूरल नेटवर्क और प्रतीकात्मक AI के अलग योगदान। पुस्तक कृत्रिम न्यूरल नेटवर्कों को AI की एक महत्वपूर्ण दिशा के रूप में रखती है। इनके पीछे प्रेरणा मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं के परस्पर जुड़े ढांचे से आती है। ऐसे नेटवर्क उदाहरणों से पैटर्न सीख सकते हैं और कई बार ऐसे वर्गीकरण या पहचान कार्य कर सकते हैं जिनके लिए स्पष्ट नियम लिखना कठिन होता है। यह क्षमता पारंपरिक प्रतीकात्मक AI से भिन्न है, जहां ज्ञान को अक्सर नियमों, अवधारणाओं और तार्किक संबंधों के रूप में स्पष्ट बनाया जाता है। बोरेन के संदर्भ में दोनों दृष्टियों का अंतर महत्वपूर्ण है। नियमाधारित व्यवस्था अपने निष्कर्षों का वर्णन अधिक साफ ढंग से कर सकती है, लेकिन असंगठित या बदलते डेटा में कठोर हो सकती है। न्यूरल नेटवर्क अनुभव से अनुकूलन सीख सकते हैं, पर उनके आंतरिक निर्णयों को समझना कठिन हो सकता है। पुस्तक इन्हें किसी एक निर्णायक विजेता की तरह प्रस्तुत करने के बजाय बुद्धिमत्ता की अलग समस्याओं के लिए अलग उपकरणों के रूप में देखने का आधार देती है। इससे एक व्यापक निष्कर्ष निकलता है कि मानव बुद्धि की व्याख्या भी केवल तर्क या केवल सीखने से पूरी नहीं होगी। स्मृति, धारणा, भाषा, क्रिया और संदर्भ का संबंध बहुस्तरीय है। AI की प्रगति इसलिए मस्तिष्क की हूबहू नकल से कम और उपयोगी संगणनात्मक सिद्धांत खोजने से अधिक जुड़ी है। चौथा, रोबोटिक्स और कृत्रिम जीवन से शरीर। परिवेश और अनुकूलन का प्रश्न रोबोटिक्स और कृत्रिम जीवन पर चर्चा पुस्तक की दृष्टि को केवल स्क्रीन पर चलने वाले प्रोग्रामों तक सीमित नहीं रहने देती। जब कोई प्रणाली भौतिक दुनिया में चलती है, वस्तुओं से टकराती है, अनिश्चित वातावरण में रास्ता खोजती है या दूसरे एजेंटों के साथ प्रतिक्रिया करती है, तब बुद्धिमत्ता की आवश्यकताएं बदल जाती है। उसे संवेदन, गति, समय, त्रुटि और जोखिम को एक साथ संभालना पड़ता है। बोडिन कृत्रिम जीवन की उन धारणाओं को भी संदर्भित करती है जिनमें जटिल व्यवहार सरल स्थानीय नियमों, प्रतिक्रिया और अनुकूलन से उभर सकता है। यह दृष्टि बताती है कि बुद्धिमान व्यवहार के लिए हर स्थिति का विस्तृत केंद्रीय नक्शा आवश्यक नहीं होता। कभी कभी परिवेश के साथ सतत प्रतिक्रिया, फीडबैक और आत्मसंगठन अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। फिर भी किसी रोबोट का स्वायत्त दिखना चेतना या मानवीय समझ का प्रमाण नहीं है। वह लक्ष्य, नियंत्रण और डिजाइन की प्रकृति पर निर्भर करता है। इस अध्याय क्षेत्र का बौद्धिक महत्व यह है कि यह मन को शरीर से अलग मानने की धारणा पर प्रश्न उठाता है। मानव और पशु बुद्धि संवेदना, क्रिया तथा जैविक आवश्यकताओं से बनी है। रोबोटिक AI का अध्ययन इसलिए यह पूछने का व्यावहारिक माध्यम बनता है कि अनुकूल व्यवहार, स्वायत्तता और जीवंतता में वास्तविक अंतर कहाँ है। अंत में चेतना और सिंगुलैरिटी के दावों के प्रति बोडिन की सावधानी, पुस्तक के अंतिम वैचारिक प्रश्न सबसे कठिन है। यदि कोई कंप्यूटर बातचीत करे, समस्याएं हल करे और रचनात्मक परिणाम दे, तो क्या उसे बुद्धिमान कहना चाहिए? और यदि वह बुद्धिमान है, तो क्या वह सचेत भी है? बोडिन इन प्रश्नों को केवल शब्दों का विवाद नहीं मानती। बुद्धिमत्ता, समझ और चेतना के बीच अंतर स्पष्ट किए बिना AI की नैतिक स्थिति, जिम्मेदारी और भविष्य के बारे में ठोस निष्कर्ष निकालना कठिन है। कोई प्रणाली बाहरी व्यवहार में प्रभावशाली हो सकती है, लेकिन उसके पास व्यक्तिपरक अनुभव है या नहीं, यह अलग प्रश्न बना रहता है। इसी सावधानी के साथ पुस्तक सिंगुलैरिटी और अतिमानवीय AI की भविष्यवाणियों को देखती है। कंप्यूटर हार्डवेयर की गति या क्षमता में वृद्धि को सीधे बुद्धिमत्ता के अनिवार्य विस्फोट से जोड़ना उचित तर्क नहीं है। अधिक प्रसंस्करण शक्ति उपयोगी है, पर उससे अपने आप सामान्य समझ, विश्वज्ञान, लक्ष्य निर्धारण या चेतना उत्पन्न नहीं होती। इसका अर्थ यह नहीं कि AI के जोखिम और परिवर्तन महत्वहीन है, बल्कि संदेश यह है कि भविष्य पर चर्चा वास्तविक तकनीकी उपलब्धियों, स्पष्ट अवधारणाओं और अनिश्चितताओं की ईमानदार स्वीकृति पर आधारित होनी चाहिए। बोडिन ना तो AI विरोधी निषेध देती है, ना तकनीकी नियतिवाद। उनका रुख आलोचनात्मक, प्रमाण सचेत और दार्शनिक रूप से अनुशासित है। निष्कर्ष में AI, इट्स नेचर एंड फ्यूचर उन पाठकों के लिए सबसे उपयोगी है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता को केवल नए उत्पादों, प्रोग्रामिंग तकनीकों या तात्कालिक नैतिक विवादों के रूप में नहीं देखना चाहते। दर्शन, मनोविज्ञान, भाषा विज्ञान, संज्ञानात्मक विज्ञान, रोबोटिक्स या प्रौद्योगिकी नीति में रुचि रखने वाले पाठक इससे विशेष लाभ ले सकते हैं। यह शुरुआती पाठक के लिए सहज परिचय पुस्तक से अधिक मूल प्रश्नों पर केंद्रित संक्षिप्त और विचार सघन मार्गदर्शिका है। इसलिए तकनीकी शब्दावली और अमूर्त तट पर धैर्य रखने वाला पाठक इसका अधिक लाभ उठाएगा। पुस्तक का व्यावहारिक लाभ यह है कि यह AI संबंधी दावों को परखने की आदत देती है। किसी प्रणाली की दक्षता, उसकी सामान्यता, उसके व्यावहारिक अनुकरण, उसकी समझ और उसकी चेतना को एक ही बात मान लेने की भूल कम होती है। बौद्धिक स्तर पर इसकी विशेषता यह है कि बोडिन AI की सफलताओं को स्वीकारते हुए भी उन्हें मनुष्य के समान बुद्धि का सरल प्रमाण नहीं मानती। कई लोकप्रिय पुस्तकों में भविष्यवाणी, भय या उत्साह केंद्र में होता है। इसके विपरीत यहाँ AI को मन और जीवन को समझने के वैज्ञानिक प्रयास के रूप में देखा गया है। न्यूरल नेटवर्क, प्रतीकात्मक तर्क, रोबोट और कृत्रिम जीवन को दर्शन के कठिन प्रश्नों से जोड़ना इसे अलग बनाता है। यह पुस्तक अंतिम उत्तर देने के बजाय बेहतर प्रश्न और अधिक सटीक वैचारिक भेद उपलब्ध कराती है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं मार्गरेट ए. बोडिन, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।